ओम शांति। यज्ञ के बहुमूल्य चैतन्य रत्न आदरणीय शिलु दीदी जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। हम सब अव्यक्त ताली से, एक हाथ की ताली से बहन जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आदरणीय शिलु दीदी ऐसा व्यक्तित्व है कि शायद ही यज्ञ में उनसे कोई अपरिचित हो। जो भी नए भाई बहने हैं वो शायद दीदी को न जानते हो। बचपन से ही आपने मुंबई में बाबा का यह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और 1969 में विज्ञान में स्नातक होने के पश्चात 21 साल की आयु में ही आपने अपना संपूर्ण जीवन बाबा की सेवा अर्थ समर्पित किया। 1970 से लेकर 74 तक बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद और मुंबई में आपने ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। 1974 से 76 तक कुछ अफ्रीकी देशों में, मॉरिशियस आदि में सेवाएं करके वहां अनेक राज्यों सेवा केंद्रों की आपने स्थापना की है। 1976 से आप बाबा के इसी मेन हेडक्वार्टर के अंदर स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और दीदी की सबसे बड़ी विशेषता वो राजयोग शिविर कराने की है। अभी तो काफी सारे हो गए हैं लेकिन समय एक ऐसा था कि जो सिर्फ शिलु दीदी जो भी आते थे वर्ष भर उन अनजान आत्माओं को शिविर करा के बाबा का संदेश देते रहे। अभी भी पूरे देश में से मधुबन में अब तो हजारों लाखों की संख्या में शिबिरार्थी आते हैं और आपका लाभ लेते रहते हैं। आदरणीय शिलु दीदी सारे ही विश्व के पांचों ही महाद्वीपों में 60 से भी अधिक देशों के अंदर ईश्वरीय सेवा अर्थ गए हैं, बाबा का संदेश दिया है। हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी भाषा में आप कुशल वक्ता के साथ साथ कुशल अनुवादक भी हैं। एजुकेशन विंग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं और आपके प्रवचन जी टीवी, सोनी टीवी, आस्था, संस्कार आदि चैनलों पर प्रसारित होते रहते हैं। अभी हम सभी सुनेंगे चेहरे और चलन द्वारा सेवा, आदरणीय शिलु दीदी।
ओम शांति। अभी अभी हम सबने एक बड़ा मधुर प्यारा सा गीत बाबा का सुना। बाबा ने हमको कितना प्यार दिया, कितना हम पर एहसान किया, कितना उपकार किया, कितना भाग्य बनाया। हम ये सब कैसे रिटर्न देंगे, कैसे रिटर्न देंगे? इतना जो बाबा ने हमें दिया है उसका रिटर्न हम कैसे देंगे? चेहरे और चलन द्वारा बाप का शो करेंगे, यही रिटर्न देने का तरीका है। केवल धन्यवाद धन्यवाद बाबा कह करके रिटर्न हो जाएगा? बाबा ने इतना प्यार दिया तो उसका रिटर्न है कि हम अपने आप को टर्न करें। बाबा ने एक मुरली में कहा ना कि क्या रिटर्न देंगे, अपने को टर्न करो, माना अपने को बदल दो। ये है रिटर्न कि जो बाबा ने दिया हम उसका क्या बाबा को दे। कई बार होता है ना, कोई हमें कुछ बहुत उपहार देता है, भेंट देता है, तो हम कहते हैं हम क्या दें। अब बाबा को देने के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं? जो स्थूल चीजें अगर हम कहें कि बाबा को धन दें, बाबा को ये दें, चीज दें, बाबा को क्या करना है? वो सब चाहिए बाबा को? बाबा को वो कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर हम कहते भी नहीं हमको देना है, तो जो चीज भी हम देना चाहते हैं, चाहे ये तन भी हम कहें हम बाबा को दे दें, ये धन भी बाबा को, सब बाबा को, तो वैसे ही कहा जाता ये है ही उसका, हमारा थोड़ी है जो हम उसको देंगे, हमारा है क्या? भक्ति मार्ग में तो गाते थे ना, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो ये तेरा है, ये मेरा नहीं है, इसलिए तेरा तुझको ही वापस, मेरा कुछ नहीं है। तो जो है ही तेरा वो मैं दे रही हूँ, ये कैसे शोभेगा कहना? पर फिर भी हम क्या रिटर्न दे सकते हैं? जो बाबा की शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को अपने अंदर धारण करके बाबा का शो कर सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर। और उसके लिए शो कैसे करेंगे? बाबा का अपने चेहरे और चलन द्वारा पाप को प्रत्यक्ष करेंगे। केवल वाणी द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वाणी में के द्वारा तो हमारे से बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छा सुनाते हैं, इतने सुंदर सुंदर शब्दों से लोगों को बहलाते हैं, शायरियां सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, श्लोक सुनाते हैं, हाँ बहुत सुंदर है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है उसकी भेंट में। तो उनसे हम दूसरों की चाहे कितनी भी सेवा करें, वो सेवा का इतना आकर्षण नहीं होगा, लेकिन चेहरे और चलन द्वारा सेवा, यही सबसे ऊंची सेवा होगी। तो इसीलिए वाणी द्वारा सेवा कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन फिर वो कहेंगे आप लोग जो कहते हो ना वो भी तो ऐसे ही कहते हैं, आप लोग जो सुनाते हो दूसरे भी ऐसे ही सुनाते हैं, कोई अलग नहीं है, ऐसे ही कहते हैं। आप लोग जो मूल्यों की इतनी बातें करते हो, आत्मा परमात्मा की बातें करते हो, ये सब सुनाते हैं, सब हम जहाँ जाते हैं ऐसी बातें मिलती है हमको, सब सत्संग में ऐसे ही सुनाते हैं, आप भी सुनाते हो। तो भले हम उनको कितना भी कहते ये नई बातें हैं, तो कहते नहीं, नहीं नहीं सब आपका भी बहुत अच्छा है, उनका भी अच्छा है, खुश तो होते ना, क्योंकि कनरस तो है ना दुनिया में, बहुत कनरस है। परंतु जब हमारे चेहरा और चलन से हम सेवा करेंगे, तब आत्माएं आकर्षित होकर आएगी। चलो हम कहेंगे कि मनसा द्वारा हम सेवा करें, परंतु हमारी मनसा भी उनको तब पहुंचेगी जब इतना वो रिसीवर भी तो सही ठीक हो ना। रिसीवर अगर ठीक नहीं है तो हम कितनी भी उनके ऊपर किरणें फेंके क्या होगा, उनको प्राप्त नहीं होगी। अब सूरज कितनी भी किरणें दे, लेकिन मैंने काला शीशा लगा दिया है अपनी खिड़की पर और बंद करके रखा है, तो क्या होगा? तो वो सूरज की किरणें कहाँ मिलेगी? एकदम पेनिट्रेट हो, अंदर जाए तब चलो कुछ वो किरणें मिले, पर एकदम डार्क स्क्रीन लगा दिया तो कुछ भी नहीं आएगा। तो वाणी द्वारा तो सेवा अल्पकाल की, उसमें भी दिमाग द्वारा जो सेवा है वो तो बिल्कुल ही अल्पकाल की, क्योंकि दिमाग द्वारा बहुत सुंदर सुंदर बातें सोच सोच करके टोटके सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं दिमाग द्वारा जो सेवा करते, दिमाग का तीर दिमाग तक ही लगता है, तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना है, फिर बाहर गए तो खत्म, सोडा वाटर बाबा कहते हैं ना, पानी बन गया वो। पर दिल से सेवा अगर करेंगे तो दिल की सेवा दिल को लगेगी, दिल का तीर दिल को लगेगा। और दिल से सेवा माना अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी चलन से, अपनी चेहरे से सच्ची सेवा। वैसे तो कहा जाता है चेहरा मन का दर्पण है, जो कुछ हमारे मन में होता है वो चेहरे पर दिखाई देता है। अगर मन में कोई खोट है तो चाहे हम चेहरे को कितना भी अच्छा क्यों न रखें, हम दिखाएं कि नहीं नहीं हमारा हमारे अंदर इसके प्रति बहुत अच्छी भावना है और अंदर में है नहीं, तो चेहरे से तो हम दिखाएंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा है, वाणी से भी कहेंगे भले पधारे बहुत अच्छा लगा आप आए, स्वागत है आपका, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से स्वागत भी करेंगे और अंदर में कहेंगे ये पता नहीं क्यों आ गया, मेरा दिमाग खराब कर ले। तो अंदर एक और बाहर दूसरा, तो थोड़ी देर के लिए तो लगेगा उसको कि भाई हाँ अच्छा हमारा स्वागत किया, लेकिन थोड़े व्यवहार में कुछ परिवर्तन तो होगा ही, वो ही रूप नहीं होगा। तो फिर उसको पता चल जाएगा कि ये अंदर में इसकी चाहना नहीं है, भले मुस्कुरा भी देंगे लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा चेहरा कुछ नाराजगी को तो दिखाएगा ही, फिर थोड़ा सा व्यवहार भी मेरा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो अंदर में है वो बाहर तो निकल ही आएगा, पहले दिखाई नहीं देगा बाहर, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, पर जो अंदर में है वो एक वो धीरे धीरे बाहर आ ही जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवहार हो, जो अंदर है वही बाहर हो, क्योंकि असली नकली चेहरा पता चल जाता है। कई ऐसे होते हैं ना, उसी समय तो मुस्कुरा देंगे, लगेगा वाह बहुत अच्छा है, पर थोड़ी देर के बाद इतना गुस्सा करेंगे जो बात मत पूछो, तो अभी अभी मुस्कुराया और अभी अभी गुस्सा आ गया, तो हम कहेंगे भाई इसके अंदर में कुछ और है। तो कैसे हम चेहरे और चलन द्वारा सेवा करें जो बाबा का नाम रोशन हो, क्योंकि दुनिया में केवल वाणी द्वारा सेवा, केवल संकल्प द्वारा सेवा ये नहीं होगी। हाँ, ये संकल्प द्वारा सेवा हो सकती है, दूर दूर तक हमारे संकल्प जा सकते हैं, वाणी इतनी नहीं जा सकेगी जितना हमारा संकल्प दूर दूर तक जा सकता है, परंतु चेहरा और चलन ये तो बिल्कुल नजदीक का है, दूर बैठे हमें कोई पहचान नहीं सकेगा, लेकिन जो मेरे संपर्क में आएगा मेरे व्यवहार के साथ उसका व्यवहार होगा तो वो तो मुझे पहचान लेगा। तो आपके जो परिवार है उस परिवार में आपका चेहरा और चलन बहुत सेवा कर सकता है। तो बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, हम दूसरों की सेवा करने जाते और घर की तो सेवा करते ही नहीं। कई ऐसे हैं ना, नेताओं के बारे में भी सुनाते हैं, ये दुनिया में घूमता रहता है पर अपने देश का कुछ भी नहीं कर रहा है, या फलाना औरों का ख्याल रखता रहता है लेकिन अपने बच्चों का ख्याल तो रखता ही नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है, एक कहावत है, यूनाइटेड नेशंस ने कहावत दी है कि सोचो दुनिया का, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। थिंक ग्लोबली माना सारे विश्व को सामने लाओ, लेकिन एक्ट लोकली, क्योंकि लोकली एक्ट करेंगे ना भाई, वो जो मेरे आमने सामने है उनके साथ ही मेरा व्यवहार होगा, तो मैं बहुत ऊंची ऊंची बातें सोचूं पर जब व्यवहार की बात आए तो व्यवहार में जीरो, उसको क्या कहेंगे। बहुत ऊंची ऊंची बातें कहूं लेकिन जो ऊंची बातें मैंने कही वो मेरे व्यवहार में है ही नहीं, तो बाबा क्या कहते हैं उसको, ये पंडित है, या तो पंडित का टाइटल मिलता है या तो तोता का टाइटल मिलता है। तोता क्या होता है, बस जो सुना वो रट लिया, बोलना शुरू किया, पर उसको खुद समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने साथ भी लगाना ये नहीं सोचता है तोता, है ना। वो कहानी बताते ना, गंगाराम नल पर मत बैठो, तो गंगाराम तोते का नाम था, तो तोता सीख गया गंगाराम नल पर नहीं बैठो, नल पर मत बैठो, तो भी वो नल पर बैठकर नलका खोल करके अब पानी गिराता रहता था और बोलता जरता गंगाराम नल पर नहीं बैठो। तो बाबा कहते हैं कि केवल मुख से कहने का प्रभाव नहीं होगा, तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि वो एक्ट लोकली, माना हमारे चेहरे और चलन द्वारा सेवा। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे वो नहीं छिपेगा, वो निकल आएगा। इसीलिए उसके लिए जरूरी है कि सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं ना कि फलाना तो बदलता ही नहीं है, कितना भी उसको समझाओ कितना भी कुछ करो तो मानता ही नहीं है, ये तो ऐसा है, हाँ सुनता ही नहीं है, हाँ ये तो बदलता ही नहीं है। अब हम उसको बदलना चाहते हैं, पर पहले मैंने अपने को देखा, मैं बदल रहा हूं, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, पर मैंने भी तो कहा, पर इसने कहा ना इसलिए मैंने कहा, अच्छा उसने भले कहा आपने क्यों कहा। तो इसीलिए दूसरा कुछ भी करे मुझे क्या करना है, उसने ऐसे किया इसलिए मुझे सामने जवाब देना ही है, इस क्योंकि उसने ऐसे किया, और दोष देंगे दूसरे को तो वो तो दोषी है ही है, पर मैंने भी किया तो मैं डबल दोषी हो गया। तो चेहरा और चलन जिससे हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, वो जब होगा तब लोग कहेंगे कि हाँ यही एक संस्था है जो सच्ची सच्ची सेवा कर रही है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को भी धन्य बना दिया है, अपने परिवार को भी कितना श्रेष्ठ बना दिया है, अपने मोहल्ले को अपने समाज को इतना श्रेष्ठ बनाया है, तो सारे विश्व को क्यों नहीं बनाएंगे। परंतु कैसे करेंगे चेहरे और चलन द्वारा सेवा, तो चेहरा माना बाबा कहते हैं आंखों द्वारा सेवा, कानों द्वारा सेवा, हमारे मुस्कुराहट द्वारा सेवा, हमारे मस्तक द्वारा सेवा। तो बाबा कहते हैं उनसे आपके वाइब्रेशंस औरों को मिले, हमारी दृष्टि इतनी शुद्ध हो जो यही नजर निहाल कर दे। उस दिन भी बाबा की पिछले संडे की जो अव्यक्त मुरली चली नजर के ऊपर, या पता नहीं साकार मुरली थी, नजर से निहाल, साकार थी अव्यक्त थी, साकार थी, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, साकार मुरली थी। तो नजर से निहाल का मतलब क्या, बाबा ने बहुत सुंदर उसका अर्थ बताया था। नजर माना क्या बताया, याद है जी, बोलो, तीसरी आंख। हाँ बाबा ने कोई इन आंखों की बात नहीं कही, तो ये तीसरी आंख तुमको इस समय ज्ञान की मिलती है, जिससे तुम तीनों कालों को देखते हो, तीनों लोकों को देखते हो, त्रिकालदर्शी बनते हो, और उस नजर से किसी को देखो, आत्मा आत्मा भाई भाई की नजर से किसको देखो, क्योंकि इन आंखों से तो देह दिखाई देगी, आत्मा तो नहीं दिखाई देगी ना, लेकिन तीसरी नजर से उनको देखो, तीसरी आंख से। तो तीसरी आंख से देखेंगे तो धीरे धीरे ये आंखें भी पवित्र हो जाएगी। कई लोग कहते हैं ना कि भाई ये आंखों से जब देखते हैं ना तो वही दिखाई देगा, बाबा कैसे याद आएगा, तो आंखें हम बंद करेंगे तब हम बाबा को याद कर सकेंगे। तो बाबा कहते ये तो हट हो गया, हट हो गया, कि आंखें बंद करेंगे तब हम बाबा को याद कर सकेंगे, परंतु ये आंखें खुली हो तो अभी तीसरी आंख से हम बाबा को देख सकते हैं, इन आंखों से तो देख नहीं सकते। तो वो समय से आंखें बंद करेंगे तो अंदर से अंदर की आंख से देखेंगे, वो अंदर की आंख कौन सी वो तो पता ही नहीं, अंदर कोई आंख थोड़ी रखी है। पर ये ज्ञान का नेत्र है तो भले ये आंखें खुली हो ना तो भी उस नेत्र से हम देख सकते हैं बाबा को, और ये देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो और ही हमको आंखें खुली रखनी है ताकि इस दृष्टि को भी पवित्र बनाना है, तीसरे आंख से देखते देखते इस दृष्टि को भी पवित्र बनाना है। अगर ये आंखें बंद रखेंगे फिर सोचेंगे अब तीसरी आंख से देखें तो ये दृष्टि पवित्र नहीं बनेगी, क्योंकि फिर ये आंखें खोलेंगे तो फिर वही दिखाई देगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इन आंखों को भी हमें शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, कि जिसको भी हम देखें इन आंखों से भी तो हम उसको आत्मा रूप में देखें, भले ये आंखें भी देखें, क्योंकि मन तो संकल्प करेगा ना ये एक आत्मा है, तो ये दृष्टि भी हमारी पवित्र हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ये दृष्टि भी एकाग्र हो गई तो मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी, मन को एकाग्र करेंगे तो ये दृष्टि भी एकाग्र होगी, लेकिन ये दृष्टि एकाग्र हुई तो मन की एकाग्रता भी को भी मदद मिलती है। परंतु अगर ये आंखें बंद है तो कैसे पता चलेगा कि मन एकाग्र हुआ या नहीं हुआ, पता ही नहीं चलेगा। मन पवित्र हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, आंखें तो बंद है, फिर आंखें खोली फिर वही नाम रूप धर्म जाति भाषा वही स्थान यही तेरा मेरा वही दिखाई देगा। तो हम कभी कभी हंसी में कहते हैं, वो शास्त्रों में आता है ना विश्वामित्र का, तो विश्वामित्र ने खूब तप किया, तो विश्वामित्र ने तप किया, सोचा कि मैं वशिष्ठ जी से आगे जाऊं आगे बढ़ूं, उसके लिए बहुत तपस्या की, कहते 50,000 साल तक खूब तप किया लेकिन आंखें बंद करके की। तो अभी विष्णु जी को आया इसकी परीक्षा ले, तो एक मेनका को भेजा, दिखाते ना, तो जैसे ही विश्वामित्र ने आंखें खोली तो क्या हुआ, वो मेनका को देख के उस पर मोहित हो गया। तो इतने हजारों साल की तपस्या, 50,000 साल जो भी जितनी भी, वो सारी तपस्या एक सेकंड में खत्म, कि आंखें खोली और एक मेनका को देखा और उसकी तपस्या खत्म हो गई, कि उस पर मोहित हो गया। अब हम लोग कहते हैं भले हजारों मेनकाएं आपके सामने आए, आप मोहित होंगे क्या? होंगे? हजारों आ जाए, चलो एक भी आ जाए, होंगे क्या? तो कौन बड़े योगी हो गए, वो विश्वामित्र या हम? हम बच्चे जा बड़े योगी हुए ना, पर इसका कारण क्या था फिर हम बताते, क्योंकि आंखें खोल के योग करते हैं, आंखें खुली रख के योग करते हैं, और इस दृष्टि को भी पवित्र बनाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि वैसे तो ये शरीर तो विकारी है, ये पतित है, और आत्मा इस पतित शरीर में तब तक है जब तक आत्मा संपूर्ण रूप से पावन नहीं बनी है। तो ये शरीर तो पावन बनेगा नहीं, क्योंकि पंच तत्व ही पतित है, पर हाँ आत्मा के परिवर्तन से, आत्मा के शुद्धिकरण से आत्मा इस शरीर से मुक्त होती जाएगी, और जैसे ही आत्मा संपूर्ण रूप से पवित्र हो गई तो इस शरीर से निकल जाएगी। हाँ भाई, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हुए, कर्मातीत अवस्था को पाया, संपूर्ण बने तो फिर इस शरीर में थोड़ी रहेंगे, शरीर में है माना अभी तक संपूर्ण नहीं हुए हैं, ये निशानी है ना। तो संपूर्ण हुए तो ये पतित शरीर नहीं रहेगा, फिर तो पावन शरीर चाहिए, अब वो पावन शरीर तो मिलेगा सतयुग में, इसलिए संपूर्ण अभी तक नहीं बने हैं, इससे सिद्ध होता है केवल एक ब्रह्मा बाबा ही संपूर्ण बने, इसीलिए संपूर्ण होने के कारण उनको वो सूक्ष्म वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाकी एडवांस पार्टी की आत्माएं भी हम कहेंगे कि हाँ कर्मातीत बनी, लेकिन कुछ उनका अलग पार्ट है, इसीलिए एडवांस में जाकर के बाबा को मदद कर रही, तो किसी हिसाब किताब तो होगा ना जहाँ जन्म लिया होगा, इसलिए कि नहीं होगा। परंतु ब्रह्मा बाबा ही केवल एक आत्मा है जो वतन में हमारा इंतजार कर रही है, शिव बाबा की साथी बनी है कंप्लीट, साथी बन करके बाप दादा के रूप में कंबाइंड रूप में कैसे सेवा कर रहे हैं, वो तो विषय नहीं है हमारा। लेकिन ये जो विषय है कि चेहरे और चलन द्वारा सेवा, तो चेहरे में पहले ये सब आता है, तो वाणी द्वारा भी सेवा जरूर है, ऐसे नहीं कि वाणी द्वारा सेवा नहीं है, पर उससे ज्यादा चेहरे और चलन द्वारा सेवा। कई बार हम बताते हैं ना कि बस आप कोई आए, आपका एक मुस्कुराता हुआ, एक आधा सेकंड भी चेहरा हो, डॉक्टर पेशेंट उसके सामने जाए और डॉक्टर एक मुस्कुराहट दे दे, तो रोगी का आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए डॉक्टरों को हम लोग ये जरूर सिखाते हैं कि आप अपने मरीज को अगर सचमुच मानसिक रीति से भी सेवा करना चाहते हैं तो पहले एक मुस्कुराहट दीजिए, मुस्कुराइए उनके सामने, तो उसके अंदर में खुशी होगी और उस खुशी से जो कुछ कहेगा वो निकल आएगा। पर आप अगर गमगीन है, बोलो बोलो क्या करना है, बोलो बोलो, साहब साहब डर जाएगा, वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं तो इसीलिए मुस्कुराहट से जैसे आधी बीमारी गई, फिर हल्के होंगे तो कई बार तो पूरी बीमारी ही खत्म हो सकती है, केवल डॉक्टर का चेहरा ही देखो। हम कई बार ना कोई चीज हमारी कोई चीज गुम टूट बिगड़ जाती है कोई भी चीज, तो उसका जो मैकेनिक होता है उनको हम बुलाते हैं, अब वो जैसे हाथ लगा तो ठीक हो गई। मैंने कहा हम तो कितनी कोशिश की, हमारे से तो ठीक हुई नहीं, आपने हाथ ही लगाया हो गई ठीक, क्या किया आपने? कहते हम तो कुछ भी नहीं किया, जादू था। हमने कहा कैसे ठीक हुआ? तो कहा कि बस हमको पता है मैजिक टच कैसे करना है, वो हम जानते हैं क्योंकि हम इसके डॉक्टर हैं, आप तो डॉक्टर नहीं है। तो देखो, तो डॉक्टर भी अगर थोड़ी मुस्कुराहट ही दे दे तो उससे भी मरीज को बहुत फायदा होता है। परंतु हमारे पास जो आत्मा आए, उदास आए, गमगीन आए, चिंतित आए, परेशान आए, और हमारे चेहरे को देख करके उसकी उसकी गमगीनी, उसका उदासीपना, उसका दुख, उसका कष्ट एक सेकंड में खत्म हो जाए, ये जादू अब कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? जो समझ हम कर सकते हैं आप बताओ। अच्छा देखे थोड़ा संकोच हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर सकते, हरे कर सकता है, पर उसके लिए क्या करना होगा, हमारा अंतर में बहुत शुद्ध हो, शुभ भावना, शुभ कामना, ये बहुत बड़ा काम करती है, जादू का काम करती है शुभ भावना शुभ कामना। इसलिए बाबा कितना हमें ये कहते रहते हैं, मनसा सेवा का भी आधार शुभ भावना शुभ कामना है। मनसा सेवा ऐसे ही थोड़ी होती है, जब तक हमारे अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तब तक मनसा सेवा भी नहीं कर सकेंगे। तो कोई मेरे सामने आए और मैं उसकी स्थिति को ऊंचा कर सकूं, उसके लिए भी शुभ भावना शुभ कामना बहुत काम करती है। कई पूछते हैं शुभ भावना शुभ कामना में अंतर क्या है? शुभ कामना माना उसके भविष्य के बारे में अच्छा सोचना, मैं शुभ कामना देता हूं कि आपका ये अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, सफलता मिलेगी, है ना। कई लोग कहते हैं अपनी शुभ कामनाएं दीजिए, गुड विशेस दीजिए, तो शुभ कामना है कि आपका ये अच्छा हो जाएगा, तो बस एक जैसे उनको कहा वो कहेगा बस आपका वरदान मिल गया हमको। वरदान तो बहुत ऊंची चीज है, पर ये शुभ कामना तो केवल मुख के बोल है। तो एक है शुभ कामना देना कि आपका ठीक हो जाएगा, दूसरा है भाई कोई कहेगा बस आशीर्वाद करो, तो कोई आशीर्वाद करे सिर पर हाथ रख करके। बाबा कहते ये भक्ति मार्ग का शब्द है, यहाँ आशीर्वाद करो हम नहीं किसको कहेंगे, बाबा को भी ये थोड़ी कहेंगे आशीर्वाद करो, बाबा कहते आशीर्वाद हर एक अपने ऊपर करे, मांगो नहीं आशीर्वाद, आशीर्वाद हर एक अपने ऊपर करें। कैसे करेंगे अपने ऊपर? अपने प्रति शुभ भावना रखकर ये अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। जो बाबा की श्रीमत है उस श्रीमत पर चल करके अपने ऊपर आशीर्वाद कर सकते हैं। बाबा की आशीर्वाद यही है श्रीमत, और हम उस पर चलते हैं ये हम अपने ऊपर आशीर्वाद करते हैं। तो एक है शुभ कामना, दूसरी है दुआ, तीसरी है आशीर्वाद और चौथा है वरदान। ये चार चीजें। तो शुभ कामना तो हर एक कर सकता है, हर एक के प्रति, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, कितना भी अपकारी क्यों न हो, कितना भी उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया हो, तो भी मैं उनके प्रति शुभ कामना रखूं। ये मेडिकल साइंस जो पढ़ते हैं ना, डॉक्टर्स जो बनते हैं, वो एक उनको एक वो लॉ आता है, हिपोक्रेट्स लॉ एक लॉ आता है, उसके अंदर उनको ये सिखाया जाता है कि चाहे आपका दुश्मन भी आपके सामने आ जाए, पर उस समय वो मरीज के रूप में आपके सामने आता है, तो उस दुश्मन का आप क्या करेंगे? उसको जहर की इंजेक्शन दे देंगे, मर जाए, क्या करेंगे? इलाज करेंगे ना उसको ठीक करने का। आपके पास वो मरीज के रूप में आया है, आपके पास वो सरेंडर हो गया है। जैसे मरीज आना माना सरेंडर हो गया ना, अब आपको ऑपरेशन करना है तो वो उसने आपको अपना तन सरेंडर कर दिया है। अब आप जो करो, काटने के बाद जो निकालना चाहो निकालो, हम आपको सरेंडर कर दिया है। लेकिन आप क्या करेंगे? अमानत है, आप भी कहेंगे ना अमानत है, तो अमानत में ख्यानत थोड़ी डालेंगे। वो ऑपरेशन करते करते कितनी निकाल देंगे, ऐसे करेंगे क्या? लेकिन दुनिया में तो करते हैं ना, दुनिया में तो बहुत कुछ करते हैं। तो इसीलिए चाहे वो दुश्मन भी आ जाए तो भी आपको उसके प्रति शुभ कामना, शुभ कामना करनी है, उसके प्रति शुभ भावना रखनी है और उसका इलाज करना है, इलाज करना है, चाहे वो दुश्मन भी हो। तो इतनी इतनी बड़ी बात है ये कि उस समय वो मरीज बन के आपके पास आया है, कुछ मांगने आया है, तो आप और कुछ नहीं दे सकते हो। चलो और कुछ नहीं है आपके पास तो शुभ कामना तो दे सकते हो, आपका भला हो, वो उसमें खर्चा नहीं है। मीठा बोलने में तो कोई खर्चा नहीं है, पर वो मीठा बोल का भी असर तब हो जब अंदर में शुभ कामना होगी। फिर दूसरा है दुआ। दुआ क्या है? आपको कुछ मिला है तो आप दिल से दुआएं करेंगे, वो आपको शुभ कामना करे और उससे आपको कुछ फायदा हो, और तो आपकी दिल से दुआएं उसके प्रति निकलेगी। तो दुआएं भी हर एक दे सकता है, चलो उनको कुछ न भी मिला तो भी दुआएं दे सकता है। उस अपकारी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया तो भी मैं दुआ तो दे सकती हूँ। शुभ कामना से थोड़ी ऊंची चीज है दुआ। दुआ भी मांगी नहीं जाती है, शुभ कामना तो फिर भी मांग लेंगे, गुड विशेस दो भाई आपके लिए, आपकी गुड विशेस, पर आप मुझे दुआ करो भले मांगेंगे, लेकिन दुआ तो अपने आप दिल से निकलती है, वो अपने आप निकलती है। आशीर्वाद खुद पर खुद ही करनी है, और वरदान कौन दे सकता है? जो भरपूर होगा, वो हदों से पार होगा, वो वरदान दे सकता है। बाबा देता है और हमें भी ऐसा बनाता है, लेकिन वो तब होगा जब पहले हम ये लक्ष्य रखेंगे कि मुझे अपने चेहरे और चलन द्वारा सेवा करनी है और उससे बाप का नाम रोशन करना है। तो दृष्टि द्वारा सेवा, मुख द्वारा सेवा, चाहे हमारे वाइब्रेशंस द्वारा भी सेवा, ये हाथ जो है ना, ये वाइब्रेशंस का हाथ है, देना है, देना है, ये देना है, ये भी देना है, ये भी देना है। लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं? देना है, देना है, वो अशरफियां निकल रही है, हाथ ऐसे, दाता का हाथ। और दूसरा देवी का हाथ कैसे होता है? वरदानी हाथ। तो इससे भी वाइब्रेशंस निकल रही है, और इससे भी समझते भाई हाथ रखो मेरे सिर पर, हाथ रखो, तो क्यों कहते हाथ रखो, इससे वाइब्रेशंस निकलती हैं। कोई तो चलो मांग कहेंगे नहीं कि आप हाथ रखो या दुआ करो, वो पैर पड़ते हैं। ये पैर छूना ये भी वास्तव में इसके पीछे भी राज है कि अगर मैं अपने हाथ किसी के पैर पर रखता हूँ तो वाइब्रेशंस आते हैं, मिलता है कुछ। पर ऐसे ही केवल हाथ फैलाया वो तो भिखारीपना है। तो बाबा कहते भिखारी मत बनो, आप अधिकारी बन के लो, दृष्टि से लो, हाथों से लो। चलो ये तरीका नहीं आता तो पैर भी छुओ, क्यों नहीं, बड़ों के पैर छूते। पर बाबा हमको, क्योंकि इतना बाबा हमें देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि तुमको तो मैं सिरताज बनाता हूँ, तुमको तो मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो मोहताज नहीं, अभी तक तो मोहताज ही थे, अभी मैं सिरताज बनाता हूँ। तो सिरताज बनना है, बाबा ने इतना ऊंचा बनाया है तो सबको केवल मस्तक पर देखो, क्योंकि तुम मास्टर दाता बन करके दोगे, तो मस्तक को देखो तो आत्मा आत्मा को दे रही है। वो पैरों को छूने से तो चलो थोड़ा बहुत मिलेगा, कुछ थोड़ा सा मामूली मिलेगा, भिखारी रूप में मांगेंगे तो कितना मिलेगा, कोई कहेगा साहब एक रुपया दो तो एक पैसा ही देंगे, एक रुपया ही देंगे क्या, जितना मांगा उतना देंगे, भिखारी ने जो कहा वो दे देंगे, वो कहेगा सौ रुपया दो तो सौ रुपया दे देंगे क्या। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा रूप में मस्तक पर देखो, तो ऑटोमेटिकली आपकी शुभ भावना शुभ कामना काम करेगी, आपकी आशीर्वाद भी काम करेगी, आपकी दुआएं भी काम करेगी, आपका वरदान भी काम करेगा, सब काम करेगा आप, क्योंकि आप दाता बन जाएंगे, मास्टर दाता बन जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला लक्ष्य कि मुझे देना है, देना है। मुझे याद आता है जब हम पहली बार विदेश गए, 74 में विदेश गए, अफ्रीका गए जब, तो अव्यक्त बाबा से हम मिले, वेदांति बहन और हम दोनों विदेश में गए 74 में अफ्रीका में सेवा करने के लिए। तो बाबा से मिले हम, तो बाबा से हमने पूछा कि बाबा हम वहाँ क्या लक्ष्य रख करके सेवा करें। बाबा ने इतनी ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई। अभी सबसे पहली बात तो ये सुनाई कि जो मुख्य बात है अभी के विषय से संबंधित, कि कभी भी कहीं आंख न डूबे, कभी नहीं ये सोचना कि मुझे इनसे कुछ लेना है, सदा ये सोचना मुझे इनको कुछ देना है। देखो कितना अंतर हो गया, क्योंकि उस समय अफ्रीका बहुत धनी था, बहुत धनवान, इंडियन लोग गुजराती लोग तो इतने धनी थे वहां, जो बात मत पूछो। अभी तो सब बदल गया है माहौल, लेकिन उस समय 74 की बात है, वो गोल्डन पीरियड था अफ्रीका का, गुजराती कितने थे हा? तो और भारत के बहुत गुरु लोग वहां जाते थे, और बस गुरु गए भाषण वाषण किया और कितना धन लूट ले करके आते थे। तो एक नाम बदनाम हो गया भारत का, कि भारत के जो गुरु आते हैं ना यहाँ से तो लूट के जाते हैं, खूब लेकर जाते हैं, लूट के जाते हैं। तो एक शक पड़ने लगा कि भारत से कोई आते मना हमारे से मांगेंगे। तो बाबा ने हमको उस समय कहा, बच्ची कभी भी आपकी बुद्धि में ये नहीं आए कि मुझे इनसे कुछ लेना है, हमेशा ये क्या सोचना इनको कुछ देना है। तो बाबा ने उसकी दो युक्तियां बताई, बहुत अच्छी दो बातें बताई। एक बात कहा कि देखो आपसे जो कई लोग आएंगे बहुत धनवान आएंगे, पर उस समय आप ये सोचना कि चाहे इनके पास कितना भी धन है, देना है ना, ये लक्ष्य तब आएगा कि चाहे इनके पास कितना भी धन है लेकिन शांति का धन नहीं है। क्या नहीं है? शांति का धन नहीं है। तो आपके पास वो धन है तो आपको क्या करना है? वो शांति का धन देना है। अब कैसे देंगे शांति का धन? मन से देंगे, वचन से देंगे, व्यवहार से देंगे, चलन से देंगे, चेहरे से देंगे ना, कैसे देंगे? मैं आपको शांति देने आया ऐसे कहेंगे क्या? सिर पर उसके हाथ रखेंगे, आपको आशीर्वाद और शांति मिलेगी? नहीं, कहना तो कुछ नहीं है, लेकिन शांति के दो बोल बोलेंगे, आत्मा का ज्ञान देंगे, परमात्मा शांति का सागर है, उसकी बातें सुनाएंगे, कैसे शांति आपके भीतर है ये सुनाएंगे, मेडिटेशन उनको थोड़ा कराएंगे, उनको शांति मिलेगी, ये देना। फिर बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात कही, कि आपके सामने बहुत धनवान लोग आएंगे। धनवान तो आएंगे, ये उसके लिए शांति देना है, शांति रूपी धन नहीं है, बाकी कितना भी धन है। फिर बाबा ने कहा कि आपके पास बहुत पढ़े लिखे लोग आएंगे, बहुत बहुत पढ़े लिखे। तो उस समय ये कभी नहीं सोचना कि ये तो मेरे से ज्यादा पढ़े हुए हैं, हम तो इतने पढ़े हुए नहीं हैं, तो हम इनको क्या सुनाएंगे, शास्त्र पढ़े हुए, ये पढ़े हुए बहुत कुछ है, हम उनको क्या सुनाएंगे, इनको सब मालूम है, ऐसे कभी नहीं सोचना। उस समय ये सोचना कि चाहे इनके पास दुनिया का ज्ञान है लेकिन खुद का ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? खुद का ज्ञान नहीं है। अब जिसको सारी दुनिया का ज्ञान पर खुद का ज्ञान ही नहीं है, तो मानो उसको कुछ भी पता नहीं। जैसे एक बच्चा हो, घर से गुम हो गया, अब उनसे पूछो तुम्हारा नाम क्या, पता नहीं, तुम्हारे मम्मी का नाम क्या, पता नहीं, डैडी का नाम क्या, पता नहीं ना। कई बार वो शांतिवन में बच्चे रो रो करके आते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, छत में मम्मी का नाम क्या है, पता ही नहीं, मम्मी ने सिखाया ही नहीं, माँ का। भाई कुछ भी हो जाए, कभी बच्चे को ये तो सिखाओ कि भाई मेरा नाम ये है, वो उसको अपना नाम भी नहीं मालूम, छोटा होता है कई बार, मम्मी का नाम नहीं मालूम, डैडी का नाम नहीं मालूम, कुछ भी पता नहीं। एक हंसी की बात सुनाती है, तो एक दादी निर्मल शांता थी ना, तो दादी निर्मल शांता बाबा के साथ बाबा कश्मीर गए हुए थे, शुरू शुरू में अपने परिवार को लेकर गए थे कश्मीर, और पीछे मम्मा संभाल रही थी। तो कश्मीर में बाबा रहते थे, वहाँ कॉटेजेस है, तो वहाँ पर बाबा रहते थे पहलगाम में, वहाँ बहुत सारी नहीं ये गुलमर्ग गुलमर्ग ये बहुत सारे स्थान है कश्मीर में, वहाँ बाबा रहते थे, एक एक मास रहते थे अपने परिवार के साथ। तो उस समय शांतामणि दादी जो थी ना, उनके लौकिक पिताजी वहाँ पहुँच गए थे। अब वो पहलगाम का रास्ता वो उनको पता नहीं चला, पहलगाम भी कश्मीर में स्थान है, पहलगाम कैसे जाते हैं। तो निर्मल शांता दादी अपने कॉटेज के बाहर खड़ी थी, तो उस तो आया उनका पिताजी, कहा कि आपको पता है पहलगाम का रास्ता कौन सा है, क्योंकि कई रास्ते थे उसके पास। तो कहा पहलगाम का तो पता नहीं, पर परम धाम का पता है। कहती है मैंने उसको ये कहा कि मुझे परम धाम का रास्ता मालूम है लेकिन पहलगाम का रास्ता मालूम नहीं है। तो अब जैसे उससे ये सुना तो वो तो हैरान हो गया इसको देखकर, परम धाम ये क्या कह रही है। तो उसी समय निर्मल शांता दादी से उसको जैसे साक्षात्कार हो गया, और साक्षात्कार हो गया तो क्या वो मेरे उस समय जैसे उसने कहा कि बाबा जी अंदर बैठे, आप उनसे पूछो कुछ ऐसे। और जैसे बाबा के पास वो गया तो बाबा ने उससे कहा कि बेटा बच्चे मैं तो 3 दिन से आपको याद कर रहा था, बच्चे आप कहाँ थे। अब वो और पिघल गया, 3 दिन से आपको याद कर रहा था। और वहाँ शांतामणि दादी और उनके लौकिक, क्योंकि बाबा इनको जानते थे, क्योंकि मम्मा तो ज्ञान में आ गई थी ना, मम्मा के ऊपर सब छोड़ के गए थे, और मम्मा की वो मौसी की बेटी थी शांतामणि दादी, उनका पिताजी, तो बाबा तो उनको जानते थे। तो बाबा ने उनको कहा कि 3 दिन से हम आपको याद कर रहे थे। तो कहा अच्छा ये वही है। और बस बाबा को देखा, एकदम चरण छू लिए, बाबा को समर्पित हो गया। फिर तो कोई पहलगाम वेलगाम जाने की बात ही नहीं थी, सीधा वापस। बाबा ने कहा सीधा बच्चे वापस जाओ, और वहाँ पर सत्संग चल रहा है, आपकी बेटी भी वहाँ जाती है, क्योंकि शांतामणि दादी भी वहाँ जाने लगी थी, और भी सब परिवार के परिवार जाने लगे थे। तो देखो पहलगाम के बदले परम धाम पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं कि कोई आत्मा आपके पास आए और अभी अगर वो अभिमान दिखाए, और उस समय आप उनको कहो कि वास्तव में इंसान मैं कौन हूं यही पता नहीं है, तो जब बाबा ने ये बात कही ना तो मुझे बड़ा नशा चढ़ गया। तो सचमुच मैं जब अफ्रीका गई, मैं आपको हंसी की बात सुनाती हूँ, तो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया था वहाँ, तो हम लोग एग्जीबिशन दिखा रहे थे तो वो आया, तो मुझे मालूम बताया था ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तो मैंने उनसे ऐसे ही वो आत्मा का जो चित्र है उनके पास मैं ले गई और मैंने उनसे पूछा आप कौन है। मैं फलाना फलाना साइंटिस्ट हूँ। पर ये तो आपके शरीर का नाम है, आप कौन है। तो उसने सोचा दूसरा जवाब चाहिए साइंटिस्ट ने, तो उसने कहा कि मैं अमेरिकन हूँ। अमेरिकन मना देश पूछ रही होगी। मैंने कहा वो तो आपके रहने का स्थान है, आप कौन है। तो मैं एक इंसान हूँ। मैंने कहा वो तो आपका शरीर दिखाई दे रहा, आप कौन है। अब वो जो कहे वो मैं फिर पूछू, वो तो कुछ अलग चीज, आप बताओ आप कौन है। तो आखिर मेरे को कहता अच्छा आप ही बताओ मैं कौन हूँ, आप ही बताओ मैं कौन हूँ, अब बता। तो हमको मौका मिल गया नहीं तो वो तो सुनने को भी तैयार नहीं था, वो समझता होगा ना कि मैं तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट। आखिर सरेंडर हो गया, आप ही बताओ, क्योंकि जो वो बताए मैं उसका दूसरे रूप से फिर से प्रश्न करूं। तो मुझे लगा कि देखो बाबा ने कैसे टच किया, सचमुच इतना वो सरेंडर हो गया, इतना उसको अनुभव हुआ उस समय। मेडिटेशन के रूम में ले गए या उसको वो मेडिटेशन उसने किया, तो कहता है हाँ अब मुझे सच्ची शांति मिली। और कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन वो बाबा का वरदान याद था कि उनको तुम आप उनको वो बताओ जो वो नहीं जानते। बाकी बोले दुनिया का कितना भी ज्ञान, उसका इतना अभिमान होता है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। फिर तो उसने कितनी मदद की, हमको अपने वहां बुलाया, फिर वहां भाषण कराया, वो तो फिर अलग कहानी है। लेकिन बात है कहने की कि कैसे देना है, ये बुद्धि में आए तो कैसे देंगे, चेहरे द्वारा और चलन द्वारा। वो कितना भी गुस्सा करे आप गुस्सा मत करो, वो कुछ भी कहे आप शांति में रहो, आप उस समय उनको दुआएं देते रहो। क्योंकि अगर किसी को गुस्सा आता है या अगर किसी को कुछ आता है माना वो आत्मा उस समय बहुत कमजोर है, गुस्सा इसलिए आता है, नहीं तो गुस्सा क्यों आएगा, हमने कुछ उसका बिगाड़ा थोड़ी है जो गुस्सा करेगा। लेकिन उसको आता माना उसका अभिमान उसको गुस्सा दिला रहा है, और वो अभिमान जब आया तो मानो अशांत है वो आत्मा, कमजोर है वो आत्मा, शक्तिशाली नहीं है। तो उस समय उनको शांति की जरूरत है, न कि आपके गुस्से की जरूरत है या आपकी नाराजगी की जरूरत है, उससे तो वो शक्तिशाली नहीं बनेगी आत्मा। तो इसलिए मुझे देना है, मुझे देना है, बस ये संकल्प करो तो बाबा कहते बहुत सेवा हो जाएगी। तो चेहरे द्वारा भी सेवा और चलन द्वारा भी सेवा, इसका तो बहुत विस्तार है, कोई अंत ही नहीं है। तभी हम यही समाप्त करते, देख रही हूँ 1 बजा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप देखेंगे मधुबन के अंदर सबके मुखड़े कैसे खिले हुए, यहाँ जो भी आते बस यही कहते हैं यहाँ पर हर एक का मुखड़ा इतना खिला हुआ है, आप लोगों को क्या मिला है यहाँ, आते ना शिविर में यही कहते हैं। तो दुनिया में तो जहाँ जहाँ उदास चेहरा, मायूस चेहरा, बात मत पूछो। भारत की संस्कृति बहुत ऊंची है उस हिसाब से। अब लंदन में जाओ, जापान में जाओ, मैं तो कई देशों में गई हूँ, जिसमें ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, आप किसके आगे मुस्कुरा दो ना, हम जानते नहीं है पर उसके आगे मुस्कुरा दो सोचेगा ये पागल है, सच्ची ये पागल है, तो मुस्कुराते हो ना पागल है क्या, क्योंकि पागल ही मुस्कुराते हो। और यहाँ तो देखो भले कोई ना भी जानते हो मुस्कुराते हुए मुस्कुरा देगा, है ना, क्योंकि भावना तो बुरी नहीं है। तो वहां पर सचमुच ऐसा उदास, ऐसे मुंह ऐसा, हाँ बस कोई किसी को देखता भी नहीं है, किसी की कोई परवाह नहीं है। ट्रेन में बैठे या तो अखबार पढ़ रहे हैं, या तो झुटके खा रहे हैं, या तो चुपचाप खड़े हैं, किसी को कोई नहीं देखेगा, कोई लेना देना ही नहीं है किसी के साथ। जापान में जाओ लोग दौड़ रहे, किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं है, भाई दौड़ क्यों रहे हो, पहुंच जाओगे ना, दौड़ रास्ते पर दौड़ रहे जहाँ देखो दौड़ ही रहे। इतना टेंशन, बात मत पूछो। शांति से चलने का तो अभ्यास ही नहीं है। और जब वो लोग इंडिया में आते कहते यहाँ तो सब ढीला सब स्लो। हम कहते हम लोग शांति प्रिय लोग है, क्योंकि राजा ही ठाट है ना भारत का, भारत में तो राजा ही ठाट है, वो लोग तो सब द्वापर कलयुग में आई हुई आत्माएं हैं। हम लोगों को अंदर में संतुष्ट रहना आता है, खुश रहना आता है, आता है ना सबको, और खुशी बांटना आता है, सब आता है, क्योंकि अंतर में हम भरपूर हैं। चलो ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। अभी तो सचमुच ऐसे लगता है खुशी का खजाना देखा जाए तो हर एक का 100 से भी ज्यादा आ सकता है, क्योंकि यह तरीका हम सभी को दीदी जी ने सिखा दिया कि कैसे बाबा हम सब बच्चों को श्रीमत के द्वारा डायरेक्शन देकर के सेवा की विधि बताते हैं। वो सारी विधि बहन जी ने बताया, और साथ साथ हम खुश रहेंगे, शुभ भावना और शुभकामनाओं से हमारी झोली अगर भरपूर होंगी तो हम अनेक आत्माओं की झोली भर सकेंगे, और तभी हमारा चेहरा और चलन के द्वारा सेवा होंगी। तो बहुत अच्छी सरल विधि के द्वारा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा हम सभी के सामने दीदी जी ने इस टॉपिक को स्पष्ट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
जादू फेरा है जिसको देखो।